والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آخر کار وہ دن آ گیا جس کا شدت سے انتظار تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوم العرفہ دکھایا. یہ وہ دن ہے کہ آج بہت سے خوش نصیبوں کو جہنم سے نجات مل جائے گی. یہ وہ دن ہے کہ آج بہت سے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ وہ دن ہے کہ شیطان آج بہت ہی غمگین ہوگا کہ اس نے جن لوگوں کو بڑی محنت کر کے الٹے راستے پر لگایا، گمراہ کیا، آج ان کی بخشش ہو جائے گی. آج اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پہ ہے. باقی دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم اور کریم ہے، ارحم الراحمین ہے ہمیشہ ہی، لیکن آج جتنی اس کی رحمت ہے اتنی کسی اور دن میں نہیں ہوتی. تو وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو اس بات کو جان لیں اور اس دن سے فائدہ اٹھائیں اور اس دن کو اہمیت دیں اور اپنی بخشش کروا لیں. آج ہی وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. آج ان کی مانگیں پوری ہونے والی ہیں، آج ان کی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا. جو بخشش چاہتا ہے وہ بخشش پا لے، جو مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے وہ یہ سب پا لے گا، جو بیماری سے نکلنا چاہتا ہے وہ شفا پا لے گا. تو آج بہت ہی اہم دن ہے، اور جیسے ہم لیلۃ القدر کو ضائع کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اسی طرح آج کے دن کو ضائع کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو دن خوش نصیبوں کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وشاہد و مشہود. تو علماء کہتے ہیں یوم مشہود عرفہ کا دن ہے، ترمذی نے یہ روایت کیا. اسی طرح وشف عی ولوطر، طاق اور جفت کی قسم جو کھائی گئی ہے ایون اور آڈ کی، تو اس میں بھی ابن عباس سے ہے کہ جو آڈ ہے وہ یوم العرفہ ہے. تو اسی دن ہمارا یہ دین اسلام مکمل ہوا تھا. ایک یہودی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہمارے ہاں نازل ہو جاتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی کہ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی تمہارے اوپر. تو عمر نے فرمایا ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی تھی. یہ عرفہ کا دن تھا، جمعہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے. اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا تھا تو ان سے میثاق لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا بلا. تو یہ کتنا عظیم دن ہے، معمولی بات نہیں ہے. اور یہ دن دوبارہ پورے سال میں نہیں آنا، اب اگلے سال تک اگر ہم زندہ رہے تو تب ہی دیکھ سکیں گے. تو اس دن میں بہت زیادہ اپنی نیکی اللہ تعالیٰ کو دکھائیے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا دن بیسٹ ڈے ہے دعا کرنے کے لیے، تو دعائیں تو خوب خوب کریں. آج کے دن آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، تو دل سے مانگیے. اس دن کو یہ نہ سوچئے گا کہ کوئی چیز ناممکن ہو سکتی ہے. اس دن کو ایسے بھی دعائیں نہ کریے گا جیسے ہم پڑھ پڑھ کے بس اور سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ لی اتنی کتابیں ہم نے ختم کر. تڑپ کے دل کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہی قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول فرماتا کہ دھیان کہیں ہے اور دعائیں مانگے جا رہے ہیں. अल्लाह अकबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ख़ास तौर पे जब एक दुआ बता दी है तो अपनी दुआएं बाकी भी हमने मांगनी है, लेकिन ये तो ज़रूर मांगिए। और इसकी अहमियत मैं आपको बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दुआ आराफा के दिन की दुआ है, और बेहतरीन बात जो मैंने और मुझसे पहले अम्बिया ने कही, यानी ये दुआ सिर्फ हमारे दिन में नहीं, पहले अम्बिया ने भी यही दुआ मांगी है। और वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसमें मांगा तो कुछ भी नहीं गया, और कीजिए, इसमें तो सिर्फ तौहीद का ऐलान है। लेकिन दरअसल अल्लाह ताला को ये बात इतनी महबूब है कि उसका बंदा तौहीद का इकरार करे। जो बंदा ये पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको वैसे ही सब कुछ अता फरमा देता है। यानी ये इतना बड़ा कलमा है, इतनी बड़ी बात है अल्लाह ताला के नज़दीक कि आप ये पढ़ते जाएं और आपकी मांगें वैसे ही पूरी होती जाएंगी। और ये फजर के बाद पढ़ें तो वैसे भी आपको पता है कि जिसने सुबह की नमाज़ से फारिग हो के 10 दफ़ा ये कह दिया, उसकी वजह से इसको 7 बातें अल्लाह ताला अता फरमाता है। अल्लाह ताला उसके लिए 10 नेकियां लिख लेता है, उससे 10 बुराइयां दूर कर देता है, उसके 10 दर्जे बुलंद करता है, सिर्फ कितनी दफ़ा पढ़ने से? 10 दफ़ा। उसको 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलता है। यानी एक बात नहीं है, कितनी सारी बातें सिर्फ 10 दफ़ा पढ़ने, शैतान से उसकी हिफाजत हो जाती है शाम तक, वो हर मकरूह चीज़ से महफूज रहता है। और इस रोज़ जिस दिन वो ये पढ़ता है, शिर्क के अलावा उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जिसने उसको मगरिब के बाद कहा, उसको भी रात में ऐसा ही सवाब मिलता है। तरगीब और तरहीब की ये रिवायत है। और जिसने 100 दफ़ा ये पढ़ लिया, तो आज हम कम से कम 100 दफ़ा तो पढ़ें, बल्कि गिन के 100 दफ़ा पढ़ें, ताकि ये ना हो कि हम सोचें अच्छा हम ये पढ़ेंगे पढ़ेंगे और फिर इतना ना पढ़ा जाए। कम से कम हर एक ने 100 दफ़ा ये तस्बीह करनी है। बाकी दिनों में हम 10 दफ़ा भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आज इस पे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई करे तो और भी अच्छा है। क्योंकि हदीस में आता है, जिसने 100 दफ़ा इस कलिमा को पढ़ा, उसको 10 गुलामों को आज़ाद करने का सवाब मिलेगा, उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, उसकी 100 बुराइयां मिटा दी जाएंगी, और उस दिन शैतान के शर से भी महफूज रहेगा, यहाँ तक कि शाम हो जाए। और कोई शख्स उस दिन इससे बेहतर अमल नहीं लाता, सिवाय उस शख्स के जो इससे ज़्यादा पढ़ ले, यानी 100 से ज़्यादा। ये बुखारी की रिवायत है। यानी अगर आपने 100 से ज़्यादा पढ़ लिया तो आपका अमल इससे ज़्यादा हो जाएगा जिसने 100 दफ़ा पढ़ा, मगर इससे बेहतर कोई ला ही नहीं सकता। अंदाज़ा कीजिए ये कलमा कितना बड़ा है। और ये मैंने आपको जो अब रिवायत बुखारी की बताई है, इसमें ये कलमा दिन में 100 दफ़ा पढ़ना है। पहले तो आपको जो बताया ना, सुबह के वक्त, अब पूरे दिन में आप पढ़ लें, आप सुबह के बाद नहीं पढ़ सकते, तो सारा दिन पढ़ा हुआ है। आप इस कलमे को अपनी ज़ुबान पे जारी रखिएगा। ये आज का स्पेशल ज़िक्र है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दें उसको तो हमने जूं का तू वैसे करना ही है। और आज के दिन, अब फजर के बाद से हर नमाज के बाद आपने तकबीरात बुलंद करनी है। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट ज़िलहज को बताया था कि आपने तकबीरें पढ़नी है, तो वो तो तकबीरें वो थी ना जो आप चलते फिरते उठते बैठते आप पढ़ रहे थे, तो वो तो एक मतलब आम थी। अब कुछ स्पेसिफिक भी आपको बता रही, वो भी करनी है, वो भी 13th तक सूरज के ग़ुरूब होने से पहले तक आपने जारी रखनी है। ये नुस्खे आपको बता रही हैं, आपको डॉक्टर बताता है ना, इतनी गोली इस टाइम पे आपने ये 3 दफ़ा खानी है, ये 4 दफ़ा खानी, तो ये बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी, हमने इनको ऐसे ही लेना है। तो आपकी एक वो तकबीरात थी जो चलते फिरते उठते बैठते आप बस हरबत कर रहे थे, वो हमने फर्स्ट से स्टार्ट की थी, और 13th के दिन सूरज के ग़ुरूब होने से पहले तक हम वो करते रहेंगे। लेकिन आज से एक और स्पेसिफिक तकबीरात भी हमने शुरू करनी है, और वो क्या है? हर नमाज के बाद, जिधर आप नमाज पढ़ते हैं, एक तो वो एक जगह होनी चाहिए मखसूस, आप वहाँ पर सामने रख लें, ताकि ये लिखी हुई होंगी तो आपको याद भी आ जाएगा कि मुसल्ले से उठने से पहले, यानी हर नमाज के बाद आपने, यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने यही वाली तकबीरात जो आप आगे पीछे पढ़ते थे, इनको अब नमाजों के बाद पढ़ना शुरू कर देना। कब से ये स्टार्ट होती हैं? 9 ज़िलहज की फजर की नमाज के बाद से अब आप पढ़नी शुरू कर देंगे, तो 13 ज़िलहज की जो आसर की नमाज है वही लास्ट होगी ना इस अशरे की, इस अशरे की नहीं, अय्याम तशरीक भी उसमें आ गए, तो उसकी असर के बाद तक, बस असर की नमाज आपने पढ़ी उसके बाद ये तकबीरात पढ़ ली। तो ये स्पेसिफिक वाली हैं, ख़ास हैं। और फिर आपको जैसे कि पता है कि 10 ज़िलहज को तो कुर्बानी भी करनी है, ये भी बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम इबादत है, और क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया फसल्ली ली रब्बी का वनहार, आप नमाज भी पढ़े हैं, इस दिन ईद की नमाज भी होगी जिसमें कि हम 7 तकबीरात एक्स्ट्रा पढ़ते हैं पहली रकत में, और दूसरी रकत में 5 तकबीरात एक्स्ट्रा हम पढ़ते हैं, तो कुल मिला के 13 हो जाती हैं, क्योंकि पहली भी मिलाएं तो 13 बन गई। आप ईद के दिन गुसल कीजिए, मुस्तहब है, अच्छा लिबास पहनिए, और हर कोई ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले, इवन औरतें भी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, और ये नमाज़ घर में नहीं पढ़ी जाती, ईदगाह में जाना ज़रूरी है इसके लिए। वो औरतें जिन्होंने नमाज नहीं भी पढ़नी वो भी जाएं ईदगाह, ईदगाह वो होती थी कि खुले मैदानों में ज़रा बाहर निकल के पढ़ी जाती थी, अब तो मस्जिदों में भी यहाँ पे होती हैं, तो लिहाजा वो पीछे बैठें मस्जिद के एरिया में ना एंटर हों, लेकिन वो भी जाएं ज़रूर, मगर इसमें एहतियात रखिएगा, ये ना हो कि हम अपनी ऊपर और गुनाह चढ़ा लें। आज का वो दिन है जब हाजी अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे, मैदाने अरफात में वकूफ़े अरफा होगा, और देखें जो अपनी अपनी ज़ुबान में जो भी मांग रहा है अल्लाह ताला सब की हाजतें पूरी करने वाला है। अरफा दिन ही, अरफा मतलब जानना, तो ये दिन अल्लाह ताला को पहचानने का दिन है, उसकी बड़ाइयाँ बयान करने का दिन है, और जितना जितना इंसान अल्लाह ताला को पहचानता जाता है उतना ही वो अपनी हस्ती को मामूली समझता है, उतना ही वो उसको पता चलता है कि मेरा रब कितना अजीम है और मैंने क्या किया, मेरे अमल क्या हैं, और अल्लाह ताला की अजमत को तो हम बयान ही नहीं कर सकते, वो तो वैसे ही आम दिनों में भी ये बात है, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत अद्दा इज़ा दान, अल्लाह ताला तो वैसे ही फरमाता है जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे उनको बताना कि मैं बहुत करीब हूँ, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। तो अगर आम दिनों में ये हाल है तो सोचिए आज अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसकी शफ़क़त, उसकी रहमत कितनी ज़्यादा होगी। आपको मैंने कल ही बताया था सुफियान अथौरी का हाल, कि किस तरह वो घुटनों के बल नील डाउन हो के कैसे अल्लाह ताला से अपनी हाजतें बयान करते थे, कैसे वो रोते थे, तो वो तो मैदाने अरफा में थे, और हम अपने घरों में ऐसी अपनी शक्ल बनाएं, ऐसे अपनी अल्लाह ताला को पुकारें, ऐसे अपनी हाजतें बयान करें कि अल्लाह ताला को हम पे रहम आ जाए, क्योंकि वो बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही रहम करने वाला है, उसकी रहमत हमारी उम्मीद से ज़्यादा है। याद रखिए आज कोई गुनाहगार ये ना सोचे कि मेरे गुनाह कैसे माफ़ होंगे, आज कोई भी दुआ करने वाला ये सोच के हाथ ना उठाए कि हाँ मेरी तो कोई दुआएं कबूल नहीं होती। अगर अल्लाह ताला की इस रहमत और बख्शिश का सहारा ना होता फिर तो देखें कोई भी गुनहगार बंदा कभी उम्मीद ही ना रख सकता, हम सब फिर मायूसी की दलदल में गिर जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मायूस होने से हमें बचा लिया, कैसे हम मायूस हो सकते हैं, क्योंकि जब रब फरमाते हैं कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ नबी मेरे बंदों से कह दें जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, जो रब खुद फरमा दे ना उम्मीद ना हो ना, यकीनन मैं सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता, यकीनन वो बड़ा ही गफूर और रहीम है। तो फिर कोई बंदा कैसे मायूस हो सकता है, वो खुद फरमाता है मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं अपने बंदे पे दो खौफ और दो अमन जमा नहीं करूँगा, अगर वो दुनिया में मुझसे डरेगा तुम्हें रोज़े क़यामत उसको अमान दूंगा, और अगर वो दुनिया में मुझसे बेखौफ हो गया तो मैं आखिरत में उससे उसको खौफ दिलाऊंगा, खौफ से दो चार करूंगा। तो एक मोमिन का दिल कभी भी उम्मीद से खाली नहीं रह सकता और खौफ से खाली नहीं रह सकता, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ना तो ऐसी उम्मीद हो कि ना डर हो जाए और कहे हमें तो कोई परवाह नहीं है क्योंकि सारा कुछ माफ़ हो ही जाना है, और ना ऐसा खौफ हो कि आप ये कहें कि आप तो हमारी कभी माफ़ी नहीं होनी। व रहमती वसेआत कुल्ला शई, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी रहमत तो हर चीज़ पे छाई हुई है, हर चीज़ पे। इंसान बेशक बहुत गुनाहगार है और उसके गुनाह शुमार भी नहीं किए जा सकते, इतने हो जाते, यानी आसमानों तक पहुंच जाते, इतने गुनाह हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मुझसे अगर तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो मुझे परवाह नहीं है उसके गुनाह कितने ही क्यों ना हो, कि ज़मीन से लेके आसमान तक चले जाएं, इतना बड़ा पहाड़ हो, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत उससे ज़्यादा है, कम नहीं है, ज़्यादा है। वो अपने सारे ही बंदों को भी माफ़ कर दे तो उसके यहाँ कोई कमी थोड़ी होनी है, और वो सबकी हाजतें भी पूरी कर दे तो उसके खजानों में कोई कमी नहीं होगी। एक जगह हमें पता चलता है एक हदीस में, अरे बड़ी प्यारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर काफिर को भी अल्लाह ताला के पास जो रहमत है उसकी वुसअत का अंदाज़ा हो जाए तो वह कभी जन्नत से मायूस ना हो। अल्लाहु अकबर। और अगर मोमिन को पता चल जाए कि अल्लाह ताला के पास कितना बड़ा अजाब है तो वो कभी जहन्नुम से बेखौफ ना हो, तो बेखौफ नहीं होना, हाँ इसका डर रखते हुए अल्लाह ताला से मांगना है। अल्लाह ताला की रहमत तो इतनी है कि बंदा जब कोई गुनाह करता है तो दाएं तरफ बैठा फरिश्ता 6 साथ तक अपने कलम को रोके रखता है, फिर अगर वो अपने किए पर नादिम होता है, पशेमान होता है, बाएं तरफ बैठा हुआ फरिश्ता, सॉरी, बाएं तरफ बैठा हुआ फरिश्ता 6 साथ तक अपने कलम को रोके रखता है। अब अगर बंदा पछताता है और अल्लाह ताला से बख्शिश मांग लेता है तो वो फरिश्ता अपना कलम पीछे हटा लेता है, लिखने से बाज रहता है, वरना एक गुनाह लिखता है। अल्लाह अकबर। और जब बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह निशान पड़ जाता है, अगर वो इस गुनाह से बाज आ जाए, तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, तो उसका दिल अल्लाह ताला दोबारा साफ कर देता है, उस धब्बे को मिटा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी प्यारी बख्शिश की भी दुआएं सिखाई हैं, जैसे कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार ऐसी दुआ है जो सारी इस्तिग़फ़ार की दुआओं की सरदार है, और वो क्या है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी, हे अल्लाह तू मेरा रब है, तूने ही मुझे पैदा किया है, वाना अब्दुका, और मैं तेरा बंदा हूँ अल्लाह, तेरा ही बंदा हूँ, वा अना अला अहदिका वादिका मस्तताअत, अल्लाह जितनी मेरी ताकत है तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ, जितना मैंने तेरे साथ वादा किया, ला इलाहा इल्ला अल्लाह भी वादा है, ऐद अलस्त भी वादा है, अल्लाह मेरी जितनी ताकत है मैं इस पे कायम हूँ, आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत हूँ, अल्लाह मैं अपने किए हुए अमल के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ, क्योंकि अपने जो अमल है ना हमारे, उसका शर होता है जो हम तक पहुँचता है, हम अपनी बुराइयाँ, जो इंसान गुनाह करता है वो किसी और के साथ बुरा नहीं कर रहा होता, अपने साथ कर रहा होता, तो अल्लाह इस अमल के शर से भी तेरी पनाह मांगता हूँ। अबू लक बि नियमति का आलैया, मेरे ऊपर जितनी तूने नेमते की मैं उसका इकरार करता हूँ, वह अबू उबी दम्बी, और अल्लाह मैं ये भी मानता हूँ मुझसे गुनाह हो गए, मुझसे गलतियाँ हुई, यानी इंसान इतराफ़ करे, इकरार करे, माने कि मैंने गलत किया, फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, तो बेशक कोई भी गुनाहों को माफ करने वाला नहीं सिवाय तेरे। तो पता है ये कलिमात अगर आप दिन को यकीन के साथ पढ़ते हैं, लेकिन यकीन के साथ, तो हदीस में आता है शाम से पहले अगर मौत आ जाए तो सीधा जन्नत में जाएगा। जो रात को यकीन के साथ ये कलिमात पढ़ ले, फिर सुबह होने से पहले अगर मौत आ गई तो जन्नती है। अल्लाह अकबर। तो उस रब की रहमत कितनी ज्यादा है, जिसने एक नेकी की उसको कम से कम 10 गुना अजर मिलता है, उससे ज्यादा जिसके लिए अल्लाह चाहे, और जिसने एक बुराई की उस बुराई से ज्यादा नहीं होगा उसका लिखा जाएगा, उसे बुराई से ज्यादा उसका गुनाह नहीं लिखा जाता, उतना ही लिखा जाता है, या अल्लाह ताला माफ फरमा देता। जब हदीस में आया कि जो शख्स एक बालिश्त मेरे करीब होता है, ये एक हाथ का स्पैन, मैं एक हाथ उसके करीब होता हूँ, जो मुझसे एक हाथ करीब होता है मैं 2 हाथ उससे करीब होता हूँ, जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ, अगर कोई शख्स मेरे पास जमीन भर कर गुनाह ले आए तो बशर्ते कि उसने मेरे साथ किसी को शरीक ना किया, मैं उतनी ही बख्शिश लेके उसको तरफ बढ़ूंगा, उसको माला माल कर दूंगा। और इंसान है, गुनाह होते हैं, अल्लाह ताला गुनाहगार को मायूस नहीं करता। अल्लाह ताला इंसानों की तरह नहीं है जो कहते हैं दफा हो जाओ, अब तुमने ये दोबारा किया, अब ना मुझे अपनी शक्ल दिखा। अल्लाह ताला ऐसे नहीं किया था, बल्कि वो तो खुश होता है जब बंदा उसके हजूर तौबा करता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पे उससे भी ज्यादा खुश होता है कि जो बंदा किसी जंगल में अपनी सवारी पे सवार हुआ, उस पे खाना पीना सब लादा हुआ था, अचानक वो सवारी गुम हो गई, आखिर वो सवारी से मायूस हो गया, मौत का इंतजार करने लगा, एक दरख्त के नीचे लेट गया, और जब वो इस मायूसी के आलम में हो गया तो अचानक वो सवारी उसके सामने आके खड़ी हो गई, वो उसकी मुहार पकड़ के इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, और खुशी में उसने क्या कह दिया, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, इतना शिद्दत जज्बात में था कि पता ही नहीं चला उसको कि इतनी गलती कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं इससे भी ज्यादा खुश होता हूँ जितनी उसको खुशी हुई कि उसको तो मौत नजर आ रही थी, उसको तो जिंदगी मिल गई, उसका सब कुछ इस ऊंटनी पे था, लेकिन अल्लाह ताला को तो खुश होने की जरूरत नहीं, खुश तो हमें होना चाहिए कि हमारे गुनाह बख्शे गए, लेकिन वो रब खुश होता है, उसका तो कुछ नहीं चाहता। ये सारी दुनिया के इंसान जिन अव्वल से आखिर तक सबसे बुरे आदमी के दिल की तरह भी हो जाए, तब भी उसकी बादशाहत में कोई कमी नहीं आती, और सब हम नेक हो जाए अव्वल से आखिर तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेके वो आखिरी इंसान तक जो क़यामत में आना है, सभी नेक हो जाए, मुत्तकी परहेजगार हो जाए, तो उसकी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं हो जाना, कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उसकी रहमत और अपने बंदे से मोहब्बत और उसके साथ जो शफकत और मेहरबानी का मामला है, तो अभी बंदा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता ही है, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जिस आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से जरा सा भी आंसू निकल आ गया, जरा सा भी आंसू आ गया कि आपकी आंखें बस भीगी हैं, आंसू गिरे भी नहीं है, मक्खी के सर के बराबर फरमाया, चाहे क्यों ना हो, इतना सा मक्खी इतनी छोटी है, उसका सर कितना छोटा है, इतना सा आंसू तो टपकता भी नहीं है, सिर्फ आंखों को भिगो देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह के खौफ की वजह से इतना सा आंसू भी ख्वा मक्खी के सर के बराबर ही क्यों ना हो निकल आता है, तो अल्लाह ताला उस चेहरे को आग पे हराम फरमा देता है। फरमाया जब किसी मुसलमान का दिल अल्लाह के खौफ से कांपता है ना कि अल्लाह मेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा है, अल्लाह मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे हो गया, अब मैं क्या करूं, अल्लाह मैं तेरे आगे कैसे खड़ा होऊंगा, तो जिसका दिल खौफ से कांपता है उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोए उसका आग में जाना ऐसे ही नामुमकिन है जैसे दूध का थनों में वापस चला जाना। अल्लाह अकबर। तो अपने गुनाहों के ऊपर रोना, इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि अल्लाह मैं गलत हूँ, इसका इकरार करना, ये अल्लाह ताला को बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही उसको महबूब है। दो ही तो कतरे हैं जो अल्लाह ताला को बड़े महबूब हैं, एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से निकला, और जो ये दूसरा है वो खून का कतरा जो अल्लाह के रास्ते में गिरा। और आपको पता है ना कयामत के दिन तो जो 7 आदमी होंगे जिनको अल्लाह ताला के अर्श का साया नसीब होगा, उनमें एक वो भी है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे, तन्हाई में, ताकि कोई रियाकारी ना हो और उसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो उस रो सकता है वो रो ले, जिसको रोना ना आए तो कम अज़ कम रोनी सूरत ही बना दे। अल्लाह अकबर। रोनी सूरत ही बना ले कि अल्लाह ताला को रहम आ जाए, तरस आ जाए इस बंदे के ऊपर। मोहम्मद बिन मुनकदर जब रोते थे तो आंसुओं को अपने मुंह पे और दाढ़ी पे मल लेते थे और कहते थे मुझे ये रिवायत पहुंची है कि जहन्नुम की आग उस जगह को नहीं छूती जहां पे अल्लाह के खौफ से आंसू पहुंचे हों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इस तरह वो अल्लाह ताला के खौफ से, अपने गुनाहों की वजह से और अपनी कमियों को, कोताहियों को सामने रखते हुए रोते थे। हालांकि ये वो लोग हैं जो ताबेईन हैं, ये वो लोग हैं जिनके तो आमाल इतने बड़े थे कि आज तक इन लोगों का नाम जिंदा है, ये वो लोग हैं। और हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं, हम तो वैसे ही बहुत ही कंगाल हैं, पता नहीं कितनी कमियां कर बैठे, कितने गुनाह कर बैठे, उनका शुमार तक नहीं। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर इसलिए फरमाते थे ना अगर क़यामत में ये ऐलान हो जाए कि एक आदमी के सिवा सब जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे, तो मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो एक आदमी शायद मैं ही हूँ। और अगर ये ऐलान हो जाए कि एक शख्स के सिवा सबको मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा, तो मुझे अपने आमाल से खौफ आता है कि वो एक बंदा शायद मैं ही हूँ। तो दोनों चीज़ों को सामने रखना है, उम्मीद भी और खौफ भी। जिस वक्त मौत का वक्त करीब हो तब उम्मीद को, हुस्ने जन को सामने रखना है, तब अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना है कि अल्लाह ताला अब जो मैंने कर दिया अब तो वो हो गया ना, अब तो आगे जाने की बात है, उस वक्त उम्मीद गालिब आ जाए। लेकिन बाकी सारी ज़िंदगी कभी खौफ कभी उम्मीद, कभी खौफ कभी, कभी एक आगे हो कभी दूसरा, जैसे इंसान के कदम होते ना, कभी एक आगे जाता है कभी दूसरा, इसी तरह लेकिन होते दोनों साथ साथ। तो खौफ भी होना चाहिए जब अपने गुनाहों की तरफ देखे, और उम्मीद भी होनी चाहिए जब अल्लाह ताला की तरफ देखे। तो हम अल्लाह ताला से आज खूब खूब गिड़गिड़ा के दुआएं करें, अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे, अल्लाह ताला हमसे हिसाब किताब ना ले, अल्लाह ताला वहाँ की आखरत की तमाम मंजिलें हमारे लिए आसान फरमा दे, और अपने रहम और करम की चादर में हम सबको ले ले, हमारे घर वालों को ले ले। अल्लाह ताला हम सबको हाजतें पूरी फरमाए, अल्लाह ताला आज जो भी हम दुआएं करें अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमा ले अपनी रहमत के साथ, और अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ ना देखना, अल्लाह ताला अपनी रहमत की तरफ देखना, अल्लाह ताला अपनी रहमत की तरफ देखना, अल्लाह ताला अपनी रहमत की तरफ देखना। और अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमा दे, आज का सूरज ग़ुरूब होने से पहले अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा दे कि अगर अल्लाह ने माफ़ ना किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम से आज़ादी का आज परवाना अता फरमा दे, हमारे लिए ये ऐलान हो जाए कि हम सबको अल्लाह ताला ने जहन्नुम से आज़ाद कर दिया, तभी हम कामयाब। اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہ کرنا، ہمارے گناہوں کا سوال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے کے ہمیں معاف نہ کرنا، اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، دنیا میں بھی نہ کرنا نہ آخرت، ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا، کسی عذاب میں مبتلا نہ کرنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نہ اجتماعی نہ انفرادی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمانا، دنیا کی بھی اور آخرت کی، عافیت عطا فرمانا، ہمارے گھر والوں کو عافیت عطا فرمانا، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دینا کہ مرتے دم ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اس وقت ہم ایمان کی بہترین حالت میں ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف روانگی ہو، جلد ہو یا بدیر ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف روانگی سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے، ناگہانی آفات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، حادثات سے، بیماریوں سے، شر سے، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم سب کے اوپر رحم اور کرم فرما دے کہ ہم اس کے بہت ہی کمزور بندے ہیں، ہم اس کے بہت ہی کمزور اور لاچار بندے، بے بس بندے، اور ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نے گناہوں کی گٹھڑیاں اپنے سروں پہ اٹھائی، کہیں زبان سے غلط باتیں ادا ہو گئی، کہیں ہاتھ پیر، کہیں نظریں، کہیں حقوق نہیں دیے لوگوں کے، زیادتیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوئی تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دینا، یا ذوالجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم، رب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کی بھی تمام دعاؤں کو قبول فرمانے، جتنے بھی حاجی گئے میں اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ان کو سب کو حج مبرور کی توفیق دے اور خیر کے ساتھ اپنے گھروں تک لوٹائے، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک اور صالح بناتے ہیں، ہماری اولادوں سے ہمیں ہمارے سینوں کو ٹھنڈا رکھے، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا، یا اللہ ہماری اولادوں کے ذریعے نہ ہمیں آزمانا، یا رب العالمین ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، نعمتیں، سر بلندیاں، عزتیں اور خوشیاں عطا فرمانا، ان کا سکھ چین ہم سب کو دکھانا، ان کے بہترین اللہ تعالیٰ آگے کام بنا دینا، ان کے لیے بہترین جوڑے عطا فرمانا، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اولادوں کو صراط مستقیم پہ چلا دے، صراط مستقیم پہ چلا دے، ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پہ چلا دے، اللہ ہماری نسلوں سے خیر کے کام لے لینا، دین کی خدمتیں لے لینا، ہم سے بھی دین کی خدمت لے لے، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، ہر کام میں جو بھی نیکی کا کام ہو اس میں ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ہمارے چھوٹے چھوٹے ان کاموں کو یا اللہ ضائع ہونے سے بچا لینا، ہم خود ہی ضائع کر دیتے، اللہ ضائع ہونے سے بچا لینا، اللہ تیری رحمت نہ ہوئی تو ہم کسی قابل نہیں، تو اتنے حاجیوں پہ رحم کر رہا ہے، ہم پہ بھی رحم فرما دینا، ہم سب پہ رحم فرما دینا یا رب، ہماری کمیوں کو دور کر دے، اللہ جو کام تجھے نہیں پسند وہ ہمارے اندر سے نکال دے، جس کام سے تو راضی ہوتا ہو یا رب وہ سارے کام ہم سے کروا لینا، ہمیں نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے نہ کوئی علم ہے، اللہ ہم جاہل لوگ، اللہ تعالیٰ تو رحیم اور کریم ہے، تو اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی مہربان رؤوف ہے، یا رب العالمین تیری رحمت سے مایوس نہیں، یا اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت کا رخ ہماری طرف کرنا، اللہ آج تک بھی تو نہیں عطا کیا، آگے بھی تو نہیں دینا، یا رب ہماری جھولیاں چھوٹی ہیں، اللہ تیری عطا بہت بڑی ہے، جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تیری عطا اس سے بہت بڑی، تیری شان اس سے بہت بڑی، تو جب عطا کرے تو کسی کے پاس کمی نہیں رہتی، اللہ تو ہماری ساری دعاؤں کو سن لے، ساری دعاؤں کو قبول کر لے، نہ تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت، نہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہونی ہے، اللہ تو ہمیں عطا فرماتے، ہم فقیر ہیں اللہ، تو غنی ہے اللہ، ہم وہ فقیر ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کشکول تک نہیں، یا رب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم وہ فقیر ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں اللہ، تیری رحمت کے محتاج ہیں یا رب، تو بخشش بھی دے دینا، تو جنت الفردوس بھی دے دینا، تو جہنم سے آزادی بھی دے دینا، تو راضی بھی ہو جانا اللہ، تو راضی ہو جانا اللہ، تو راضی ہو جانا، ہمارے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں تیرے آگے، کوئی ایسی نیکی نہیں جو ہم تیرے آگے پیش کر سکے یا رب، دکھانے کو کچھ نہیں یا اللہ، ہم خالی ہاتھ ہے، تو ہم پہ رحم کر، ہم پہ ترس کھا لینا، ہمارے گھر والوں کو نیک ہدایت عطا فرمانا، اللہ عافیت عطا فرمانا، اللہ حادثات سے بچانا، ناگہانی اموات سے بچانا، بیمار جو جو کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ تمام کو شفا کاملہ اجلا عطا فرمانا، جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لکھا ہوا ہے یا اللہ تو سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، سب بیماروں کو شفا کاملہ اجلا عطا فرماتا یا رب العالمین، جن کی اولادیں بگڑ گئی ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ لیا، یا اللہ والدین کی آزمائش نہ کرنا یا اللہ تعالیٰ، جو اولادیں بگڑ گئی ہیں یا اللہ تو ان کو راہ راست پہ لیا، یا اللہ والدین کو اپنی اولادوں کے پیچھے نہ رلانا یا رب العالمین، سب کی اولادوں کو ان کے سینے کی ٹھنڈک بنانا یا رب العالمین، سب کی اولادوں کو سینے کی ٹھنڈک بنانا یا اللہ تعالیٰ، ہمیں بھی حج پہ بلا لینا، عمرے کی سعادت نصیب فرمانا، حج کی اللہ اپنے گھر کا دیدار عطا فرمانا یا اللہ، بار بار ہمیں بلانا، بار بار بلانا اللہ، اگلے سال ہمیں بھی آج آج کے دن اگلے سال ہم بھی میدان عرفہ میں ہوں یا اللہ تعالیٰ، ہمیں بھی سب کو نصیب فرمانا، حج مبرور نصیب فرما دینا، حج مبرور نصیب فرما دینا، ہمارے شوہروں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا یا اللہ تعالیٰ، گھروں میں سکون عطا فرمانا، گھروں میں سکون عطا فرمانا یا رب العالمین، ہمارے گھروں کو ہر بلا سے محفوظ رکھنا، ہر بلا سے محفوظ رکھنا یا اللہ، تمام مومن مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما دینا، سب کی بخشش فرما دینا یا رب، جو بھی ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہوئے اللہ، کسی کو خالی نہ لوٹانا یا رب، کسی کو خالی نہ لوٹانا یا رب، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے غلام ہیں یا اللہ، اللہ جو بھول چوک سے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی معاف کر دینا، جو جان بوجھ کے کیے ان کو بھی معاف کر دینا یا اللہ، اپنی رحمت ہی ہماری طرف رکھنا یا اللہ، ناراض نہ ہونا کبھی، ہم سے ناراض نہ ہونا یا اللہ تعالیٰ، امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرمانا یا اللہ، امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرمانا یا اللہ تعالیٰ، جہاں جہاں مسلمان مصیبت پریشانی میں یا اللہ تعالیٰ، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دینا، جدھر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا رب العالمین، تو ظالموں کا ہاتھ تو پکڑنے والا ہے اللہ، تو خود ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا یا اللہ تعالیٰ، تو خود ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا یا اللہ، یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو خود کیفر کردار تک پہنچانا یا اللہ، چائنا میں جو مسلمان پس رہے ہیں یا اللہ، فلسطین میں یا رب العالمین، روہنگیا کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، جو جہاں بھی مسلمانوں پہ آزمائشیں آئیں یا اللہ، جو انفرادی ہیں، جو اجتماعی ہیں یا رب العالمین، تو سب کے اوپر رحم اور کرم فرما یا اللہ، رحم اور کرم فرما یا اللہ، رحم اور کرم فرما اللہ، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن تو تو ہے نا یا اللہ، جو ستائے جاتے ہیں صرف تیرا نام لینے پہ یا اللہ تعالیٰ، تو نہیں ان کا کچھ حال سدھارے گا تو کون کرے گا یا اللہ، تیرے نبی کی امت آج لٹ رہی ہے دنیا میں، آج بدنام ہو گئی، ذلیل ہو گئی ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے یا رب العالمین، تو ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، جہاں جہاں مسلمانوں پہ مصیبت ہے ان کی مصیبتیں دور فرماتے، ان کی مصیبتیں دور فرماتے، ان کی مصیبتیں دور فرماتے اللہ، مظلوم کا تو ہی حامی و ناصر ہے یا اللہ، مظلوم کا کوئی سننے والا نہیں، ان کا کوئی سننے والا نہیں یا اللہ، تیری طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں اللہ، تو نے ظالم کو ڈھیل دی بھی ہے یا رب العالمین، اب اس کے ہاتھ پکڑ لے یا اللہ تعالیٰ، اس کے ہاتھ پکڑ لے، تمام اسلامی ممالک کی اللہ حفاظت فرما اللہ تعالیٰ، پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ تعالیٰ، پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، ہم جہاں رہتے ہیں یہاں پہ ہمیں امن و امان عطا فرما या अल्लाह यहाँ पे हम अपने दीन को बेहतरीन तौर पे अमल में ला सकें। या अल्लाह ताला हमसे सबसे कुरान की खिदमत ले लेना। या रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान का दाई बना देना। हम सबको या रब्बुल आलमीन कुरान पे अमल करने वाला चलने वाला बना देना। इसको सीखने, इसको समझने की, इसको आगे फैलाने की, इसको पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा देना। हमारे बच्चों से भी ये खिदमतें देना, उनके दिलों में भी कुरान की मोहब्बत डाल देना। इस कुरान को हमारी कब्र का साथी बना देना। अल्लाह मैदाने हशर के अंदर हमारा सिफारशी बना देना या रब। या अल्लाह ताला अपने हर अजाब और हर मुसीबत और हर परेशानी से बचा के हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाना। या अल्लाह किसी किस्म की भी हमें परेशानी ना दिखाना या रब। कब्र के अजाब से भी बचाना, जानकारी के अजाब से बचाना। मौत के वक्त तू हमारा सहारा है या अल्लाह, हमने तुझे पुकारा है। या अल्लाह तू हमारी मौत को आसान करना, हमारी मौत को आसान करना। उस वक्त शैतान के गलबे से महफूज रखना। ईमान की हालत में दुनिया से ले जाना या अल्लाह, ईमान की हालत में दुनिया से ले जाना। अपने नबी के हौस का पानी हम सबको नसीब फरमाना या रब्बुल आलमीन। हर किस्म की आजमाइश से हम सबको बचा लेना, हर किस्म की आजमाइश से। या अल्लाह जो कोई टूटे फूटे कोई काम किए अल्लाह पाक, या अल्लाह ताला तू उन्हीं को कबूल कर लेना। या अल्लाह उन्हीं को कबूल कर लेना। हमारे पास नेकी तो कोई नहीं है पर अल्लाह जो भी हमसे हो सका, क्या नमाजें और क्या रोज़े और क्या जिक्र और क्या तकबीरात हमने पढ़नी, या अल्लाह तू अपनी रहमत से इसी को कबूल कर लेना। या अल्लाह तेरी शान के लायक तो नहीं है हमारे अमल, तो इसी को कबूल फरमा लेना या रब्बुल आलमीन। हमें बचा के रखना आइंदा गुनाहों से अल्लाह, आइंदा ज़िंदगी में तू खुद हमें गुनाहों से बचा लेना अल्लाह, हमसे नहीं बचा जाता। या अल्लाह ताला तू हम सब का हामी व नासिर हो जाना, हमारे घर वालों का हामी व नासिर हो जाना। हिफाजत फरमाना, हिफाजत फरमाना। या अल्लाह ताला आगे की ज़िंदगी में भी बरकतें अता फरमाना, रिस्क में बरकत अता फरमाना। जिनके रिस्क के मसाइल हैं अल्लाह उनके ये मसाइल हल फरमा देना। या अल्लाह जिनकी और कोई परेशानियाँ, तो सबकी परेशानियों को तू जानता है अल्लाह, सबकी परेशानियाँ दूर कर दे या रब। तू तो बड़ा ही मेहरबान है अल्लाह, एक माँ तो क्या 70 माँ से भी ज़्यादा तेरी मेहरबानी और शफ़क़त और मोहब्बत अपने बंदों के साथ है अल्लाह। सबकी परेशानियों को दूर कर दे अल्लाह, सबकी परेशानियों को दूर कर दे। सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देना, सबकी मुश्किलों को आसान कर देना या अल्लाह। सबके मसलों को हल फरमा देना या रब, सबके मसलों को हल फरमा देना। हम सबको इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा देना या रब्बुल आलमीन। या रब्बुल आलमीन जहाँ जहाँ जिसके हाथ उठे हुए या अल्लाह, सबकी झोलियों को भर देना अल्लाह, सबकी हाजतें पूरी फरमा देना। जो मांगा अल्लाह पाक उसको भी कबूल फरमा ले। जो भूल ही गया अल्लाह, हम तो भूल चूक वाले हैं या अल्लाह, काबिल ज़ात तो तेरी है अल्लाह ताला। जो भूल गया, तुझे पता है हमारी ज़रूरतें, तुझे पता है हमारी हाजतें, तुझे पता है कि हम किस हाल में। अल्लाह ताला तुम्हारी सारी हाजतों को पूरी फरमा देना। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا. ایک دوسرے کو ضرور اپنی دعاؤں میں آج کے دن یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب سے قبول فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.